الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد دیکھو بات چل رہی تھی وساوس کا علاج مجلس نمبر 50 گزشتہ بھی وہی مجلس تھی لیکن اس پر نمبر لکھنا بھول گیا تھا تو فرمایا ایک ہے وساوس کی مثال بتائی ایک ہے وساوس کا آنا اور ایک ہے وساوس کا لانا لانا منع ہے آنا منع نہیں کیسے پتا چلے کہ یہ آیا ہے یا لایا ہوں تو فرمایا اگر اس میں شک ہے تو اس کو آیا ہوا سمجھے وساوس کی مثال بجلی کے تار کے مانند ہے کہ اس میں کرنٹ دوڑتا ہے تو اس کو ہٹاؤ تو بھی لگے گا اور دیکھنے کے لیے پکڑوں گے تو بھی لگے گا اسی طریقے سے وساوس اگر ہمارے اندر آ رہے ہیں تو اس کے پیچھے مت پڑو بلکہ دوسرے کام میں لگ جاؤ اس کو ہٹانے کی کوشش کروں گے تو بھی وہ ہمیں پکڑے گا تو وہاں پر بات چل رہی تھی پھر اس کے بعد تھی نماز میں خیالات کا لانا کہ جو نماز ہوتی ہے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس کسی نے آ کر سوال کیا حضرت نماز میں دل نہیں لگتا تو جواب میں حضرت نے فرمایا کہ نماز میں دل لگانا فرض ہے دل لگنا فرض نہیں دل لگانا فرض ہے دل لگانا لگنا فرض نہیں یعنی اپنی طرف سے دل لگانے کی کوشش کرنا ضروری ہے لیکن لگنا ضروری نہیں اگر نہ لگے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو اب خشوع کا کون سا درجہ مطلوب ہے اس کے بارے میں لوگ افراط اور تفریط میں چلے گئے کوئی تو خشوع جنید بغدادی جیسا اور خواجہ معین الدین اجمیری جیسا خشوع اور خضوع اور صحابہ جیسا خشوع ابھی اس وقت میں نہیں ہے لیکن جو ابھی اس وقت میں مل رہا ہے وہ بھی غنیمت سمجھے تو ارے بھائی اور وہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا جو خشوع تھا کہ باغ کے اندر ایک پرندہ پھنس گیا انہوں نے باغ کو صدقہ کر دیا تو آج ہم بھی سوچتے ہیں کہ ہمیں بھی ایسا مل جائے نہیں ہمیں جو بھی ملا ہے وہ اس کو اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کی دوسری مثال تھی کہ مثلا حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ کا قصہ پڑھ لیا کہ وہ بادشاہی اور تمام سامان اور اسباب چھوڑ کر چل پڑے جی اور سوائے ایک تکیہ اور پیالے کے کچھ ساتھ نہ لیا بادشاہت پوری چھوڑ دی ابراہیم بن ادہم نے آگے چل کر جب ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ چلو سے پانی پی رہا ایک پیالہ لیا تھا ساتھ میں تو کہا چلو سے یعنی ہاتھ سے پانی پی رہا ہے تو انہوں نے سوچا کہ پیالہ بھی فضول ہے اس کو بھی پھینک دیا اور آگے چلے اور آگے چلے تو دیکھا کہ ایک آدمی سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر سو رہا ہے تو انہوں نے سوچا کہ تکیہ بھی بیکار ہے اس کو بھی پھینک دیا دو چیزیں ساتھ میں لی تھی لیکن دیکھا اس کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے تو اس کو بھی پھینک دیا اب اگر کوئی شخص اس واقعے کو سن کر یہ سوچے کہ نجات کا راستہ وہ ہے جو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ نے اختیار کیا تو پھر تو ہمارا کباڑا ہو جائے گا ہمارا تو کباڑا ہو گیا یعنی ہمیں تو پھر زندگی کیسے گزاریں پھر تو گھر کی ہر چیز نکال دو بولے تکیہ بھی ختم بیڈ بھی ختم بستر بولے زمین پر سویا تو ہم بھی زمین پر سوئیں گے ہماری تو ساری دنیا ماری گئی کیونکہ اب تو سب دنیا گنا جائے گا تو حضرت فرماتے ہیں کہ ان واقعات کو ضرور پڑھ بہت سے لوگ ایسے واقعات کو سننے کے بعد اور پڑھنے کے بعد دماغ میں بٹھا لیتے پھر اس کے بعد ان کو لگتا ہے کہ ہو میں تو دنیا میں پھنس گیا اب اس کو جو گھر کی ضرورت کی چیزیں ہیں اب وہ اس کو دنیا لگ رہی ہوتی ہے یہ ایسے قصوں کو پڑھنے کے بعد لیکن جب ایسے قصوں کو سمجھیں گے تو سمجھنے کے بعد وہ دنیا نہیں لگے گی پڑھنے کے بعد لگے گی تو یہ سمجھ رہے ہیں تو فرمایا तो फिर हमारा तो हजरत फरमाते कि इनके वाकयात को जरूर पढ़ो, लेकिन दुनिया की हकीकत समझने और उनसे इबरत हासिल करने के लिए पढ़ो। बोले पहुंचना तो वहां तक है, लेकिन अभी हम कुछ भी नहीं बने, तो अपने अंदर एक तवाज़ु और आजीजी रहेगी। मगर ये मत समझो कि तुम्हारे लिए मदारे नजात नदार नजात की नजात का रास्ता वही है, ये मत समझो कि जैसे उन्होंने किया था तो ही हमें नजात मिलेगी। नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए नजात का रास्ता वो है जो तुम्हारी अपनी ताकत के मुताबिक है, तुम्हारी अपनी ताकत के मुताबिक है। तो इसलिए ऐसे वाकयात को पढ़ने के बाद बहुत ज्यादा वसाविस में न चले जाए कि अब मेरा क्या होगा, अब मेरे अंदर तो ये दुनिया है, मेरे अंदर तो ये है। तो फौरन ऐसी चीज को पेश करें अपने बुजुर्गों के सामने, अल्लाह वालों के सामने, कि मेरे को ये वसवसा हो रहा है, मैं क्या करूं। लेकिन अपनी तरफ से सब चीजों को न निकाल दे, अपनी तरफ से पैसों को ऐसे कि अब तो मुझे कमाना नहीं, अब तो मेरे पास इतना है जिससे मेरी गाड़ी चल जाएगी, नहीं, सब पूछ पूछ कर करे, वरना नफ्स दूसरे रास्ते से मारेगा। बहरहाल खुशू का वो मकाम जो हजरत अबू तलहा रदील्लाहु अन्हु को हासिल था, या खुशू का वो मकाम जो हजरत सहाबा को हासिल था कि सीने पर तिल लग रहे तीर लेकिन नमाज जारी है, देखो पता ही नहीं चला, या खुशू का वो मकाम जो अवलिया अल्लाह और बुजुर्गान दीन को मिला, अगर वो मकाम तुम्हें नहीं मिल सकता और नहीं मिला, तो जो तुम्हारे करने का काम है इतना तो करो, जो तुम्हारे करने का काम है इतना तो करो जी। तो वही हो गया ना, हमारे हाथ में कोशिश करना फर्ज है, हासिल होना फर्ज नहीं। तो हम कोशिश करें, कोशिश करके हमें हासिल उस दर्जे तक नहीं पहुंच सकते, तो पहुंचना भी जरूरी नहीं। जितनी ताकत है उतना करो। वो काम क्या है तुम्हें, जो काम करना है वो क्या है? वो काम यह है कि नमाज पढ़ते वक्त हम नमाज में ध्यान कैसे लगावे, उसका तरीका बता रहे हैं। तो फरमाया नमाज पढ़ते वक्त जो अल्फाज जबान से नमाज के अंदर अदा हो रहे हैं उनकी तरफ ध्यान रखो। मसलन जब जबान से अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ रहे हो तो ध्यान भी उन्हीं अल्फाज की तरफ रखो कि यहां बड़ी हा है और यहां पर आइन है और यहां पर मद्दा है, यानी इसी तरीके से पढ़ो। सीखो भी ऐसे ही, पढ़ते वक्त भी पूरा ध्यान हो कि यहां पर जबर है, यहां पर लाम के ऊपर जजम है तो उसको अल पढ़ा जाएगा, अलहम्दो नहीं पढ़ा जाएगा, अलहमदो नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो अभी एक एक चीज को ध्यान में रखोगे उसे ध्यान रहेगा, वरना क्या होगा, हमें सूरह फातिहा तो याद है लेकिन पढ़ते जा रहे हैं पता ही नहीं चली कि किधर हमने हा पढ़ी किधर आयन पढ़ी। तो इसलिए हमें उसके जबर और जजम का भी पता हो, उसको ज्वाइंट करने का भी पता हो, और जहां तशदीद है उसका भी पता हो, तो वो सारा ध्यान रखेंगे। और यहाँ या मद आया, यहाँ छोटी मद है या बड़ी मद है, तो उसको इतना खींचना उतना कम करना, वो सब, तो इससे क्या होगा, ध्यान रहेगा नमाज में जी। तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ रहे हो तो ध्यान भी उन्हीं अल्फाज की तरफ रखो। और आपको ये मालूम रहना चाहिए कि मैं जबान से अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कह रहा हूं, ये भी पता चले कि मैं क्या पढ़ रहा हूं। जब ये काम कर लिया तो बस तुम्हारी जर्फ और तुम्हारी बिसात और ताकत की हद तक तुमने खुशू हासिल हो गया। अगर इतना कर लिया तो तुम्हारा खुशू हो गया तुम्हारी ताकत के मुताबिक। और ज्यादा ऊंची परवाज की फिक्र मत करो, उससे ज्यादा और उड़ना है उसकी फिक्र मत करो, पहले इस पर आ जाओ। ये ना हो कि जब नमाज की नियत बांधी और तकबीर तहरीमा कही तो एक स्विच ऑन हो गया और मशीन चल पड़ी, और अब कुछ पता नहीं कि किस वक्त क्या हो रहा है, कब रुकू हुआ, कब सजदा हुआ, कब सूरा खत्म की, कब दूसरी सूरा मिलाई, पूरी नमाज इसी तरह खत्म होगी, स्विच ऑन था और अब ऑफ हुआ। आजकल हमारी नमाजें तो ऐसी ही है कि अल्लाह अकबर करके स्विच ऑन हो गया और सलाम फेरते हैं तभी ऑन होते, उसको कहते हैं लैंड हुआ, वहां पर प्रवास कर लिया, उड़ते रहे और जब सलाम किया तो लैंड हो गया। तो हमारी नमाज तो ऐसी है, मेरी भी ऐसी ही है, इसलिए मुझे तो बहुत फायदा हुआ कि ओहो पूरी नमाज इसी तरह खत्म हो गई। अब ये भी याद नहीं कि पहली रकात में कौन सी सूरा पड़ी थी, दूसरी रकात में कौन सी सूरा पड़ी थी, ये चीज खुशू के खिलाफ है, ये चीज खुशू के खिलाफ है। तो ये है, बाकी अब ये खुशू के अल्फाज पर ध्यान है, कौन सी सूरा पड़ी, तो ये खुशू है। खुशू ये है कि अपनी तरफ से कोशिश करके दिमाग को इन अल्फाज की तरफ लगाओ जो तुम जबान से अदा कर रहे हो, बस इसका नाम है ध्यान। बहुत से लोग सवाल करते हैं, हमें नमाज में ध्यान नहीं रहता, क्योंकि नमाज ही का सवाल होता है, हालांकि ध्यान उनका किसी भी जगह नहीं रहता, खाली नमाज में नहीं, लेकिन नमाज की अहमियत होती है इसलिए नमाज का सवाल करते हैं। उनका ध्यान कारोबार में भी नहीं, उनका ध्यान बीवी बच्चों में भी नहीं। अगर ध्यान कारोबार में होता तो कारोबार में कभी किसी को धोखा न देता, कभी झूठ न बोलता। घर में होता तो घर में उसकी जात से न बीवी को तकलीफ होती, न बच्चों को तकलीफ होती, न किसी सामान की चीज को इधर से उधर, घर के सामान को रखते, जहां से उठाए वहां रखते, इसको कहते हैं ध्यान। लेकिन कभी उस ध्यान की फिक्र किसी को नहीं होती, ये होता है कि नमाज में ध्यान नहीं रहा, क्योंकि नमाज में अगर ध्यान आ गया तो हर तरफ ध्यान भी आना शुरू हो जाएगा। तो ये है कि ध्यान तो हर जगह लाना है, कारोबार में भी ध्यान से बैठना है, नमाज में भी ध्यान है, हर जगह पर का हर इबादत को इस तरह करना गोया के मैं अल्लाह मुझे देख रहे, मैं अल्लाह को देख रहा हूं। अगर ये ध्यान न जमे तो फिर अल्लाह मुझे देख रहा है, बस इतना ध्यान रखो। जब अल्लाह देख रहा हो तो इंसान फिर किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। तो वाकईतन अल्लाह हमें ध्यान वाली नमाज नसीब करे। बस अगर तुमने कोशिश की और कोशिश के नतीजे में दिमाग उस तरफ मुतवज्जे हुआ और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम पढ़ने तक तो ये तवज्जो बरकरार रही, फिर अचानक दिल में कोई और गैर इख्तियारी ख्याल आ गया, हाँ फिर मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बेतवज्जो से पढ़ लिया, ध्यान ही चला गया। अब मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु बेतवज्जो से पढ़ लिया, तो ये गैर इख्तियारी ख्याल आना ये खुशू के मनाफी नहीं है। यानी ऐसा ना समझो कि खुशू नहीं रहा, ये तो बे इख्तियार चला गया और बे इख्तियार आपने दो आयतें पढ़ ली फिर ध्यान आ गया, तो कोई बात नहीं, खुशू के आपको खुशू ही गिना जाएगा और उस पर कोई मुआखजा नहीं, कोई पकड़ नहीं, कोई पकड़ नहीं, बशर्ते कि जिस वक्त तुम्हें तंबीह हो जाए, पता चल जाए कि मैं तो गाफिल हो गया और ये ख्याल आए कि मैं तो भटक गया, तो फिर वापस इन अल्फाज की तरफ आ जाओ जो तुम पढ़ रहे थे। लिहाजा जब इहदिना सिरातल मुस्तकीम पढ़ते वक्त ध्यान आ गया तो अब ध्यान को दोबारा उस तरफ ले आओ, तो बीच में कट गया फिर वापस आ गया, हाँ जैसे नेट पर आवाज कटती है ना फिर आ जाती है ना, तो ऐसे ही नमाज में शुरू में आवाज और ध्यान था, फिर कट गया फिर ध्यान आ गया, तो अब इसको ध्यान ही कहा जाएगा। फिर अगर दोबारा फिर भटक गया तो फिर वापस आ जाओ, फिर भटक जाए फिर वापस आ जाओ, अगर इसी तरह करते हुए नमाज पूरी कर ली तो खुशू हासिल है। अलबत्ता अपनी तरफ से ख्यालात न लाओ, अपनी तरफ से नहीं लाए। तो ये है, तो अब इस तरीके से अगर एक ही रकात में पूरी नमाज में इस तरीके से होता रहा तो ये खुशू का दर्जा उसको हासिल है, उस पर फिक्र न करे और कोशिश और करते जाए। जी, क्योंकि ये बहुत सो को सवाल होता है और नमाज का सवाल, हमें नमाज में खुशू नहीं रहता है, इसका बहुत बेहतरीन जवाब आ गया कि असल में हम वो खुशू को पकड़ना चाहते हैं जो हजरत अबू तलहा रदिल्ला अन्हु को था, हाँ, और वो जो हजरत अब्दुल्ला रदिल्ला अन्हु जिनकी नमाज में तीर लगते थे पता भी नहीं चलता था, वो सहाबा की नमाज थी। अब उस पॉइंट पर तो हमें कोशिश करना, नहीं जाएंगे लेकिन अल्लाह ताला कयामत के दिन उन्हीं के साथ उठाएगा, क्योंकि हमारा ईमान जैसा है वैसे हम नमाज पढ़ेंगे, उनका ईमान जैसा था वैसे वो नमाज पढ़ते थे। तो उसके लिए नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, और ये नहीं समझना चाहिए कि मैंने तो क्या नमाज पढ़ी, मैंने तो टक्करे मारी, मेरी तो नमाज बेकार गई, ये नाउम्मीदी पर नहीं जाना चाहिए। अल्लाह का शुक्र अदा करना, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे सर झुकाने की, हुक्म को पूरा करने की तौफीक तो अता फरमाई। जी, ख्यालात लाने का मतलब ये है, ठीक है ना, एक तो ख्यालात आ जाते हैं और एक है लाना। लाने का मतलब है कि मसलन आपको किसी कारोबारी मसले में सोचना है, और आपने सोचा कि कोई वक्त तो मिलता नहीं, वैसे तो मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन चलो नमाज पढ़ता हूं ना, तो नमाज पढ़ते वक्त सोच लूंगा उस दुकान के बारे में, उसको कहते हैं लाना, क्योंकि वही नमाज में ही फुर्सत मिली है, तो बोले उस वक्त को भी मैं कारोबार में लगा दू, सोच लेंगे और उस वक्त गौर कर लेंगे। अब जब नमाज में खड़े हुए तो बाकायदा उस कारोबारी मसले पर गौर करना शुरू कर दिया, ये सूरत हराम और नाजायज है जी, इसको कहते हैं लाना। अब ऐसा तो बताओ, कोई भी ईमान वाला जो है, जिसके दिल में जरा भी ईमान है, वो तो ऐसा नहीं करता है, कभी भी सोचता नहीं है, लेकिन चला जाता है। तो बाकायदा उस पर गौर करना शुरू कर, ये सूरत हराम ना जी। इसलिए कि इसमें अपनी तरफ से कसद करके ख्यालात ला रहा है, इरादा करके ख्यालात ला रहे हैं जो नाजायज है। तो लेकिन यहां एक बात और अर्ज कर दूं, सुन लो जरा, यहां एक बात और जो बड़े काम की बात है, ध्यान से सुने, वो ये कि इन ख्यालात का लाना नाजायज है, उन ख्यालात का लाना नाजायज है जो खालिस दुनियावी हो, उन ख्यालात का लाना नाजायज है जो खालिस दुनियावी हो, लेकिन ताअत और इबादत का ख्याल सोच कर और कसद करके लाना भी जायज है। आगे आएगा, ये गुना और नाजायज नहीं। मसलन एक शख्स आलिम है और वो नमाज में कसद करके किसी फिकही मसले के बारे में सोच रहा है और जानबूझ को ख्याल ला रहा है, हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये सूरत नाजायज नहीं। अल्लाह अकबर, अजीब है भाई, हाँ ये सूरत नाजायज नहीं, इसलिए कि वो ख्याल लाना मना है जो मा सिवा अल्लाह हो, मा सिवा अल्लाह हो, यानी अल्लाह के अलावा का हो, और जो ख्याल अल्लाह ही के लिए हो वो मा सिवा अल्लाह में दाखिल नहीं, लिहाजा इसका लाना नाजायज नहीं। और हजरत फारूक आजम रदिल्लाहु अन्हु का जो अमल बयान किया, इन्नी लउजाहिजु जैशी व अना फिस्सला, कि मैं नमाज के अंदर लश्कर को तरतीब देता हूं, उनका ये अमल भी उसी पर महमूल है। अल्लाह अकबर कबीरा, अजीब कि वो मा सिवा अल्लाह में दाखिल नहीं, क्योंकि लश्कर की तरतीब जिहाद जैसी अजीम शान इबादत के लिए हो रही है, अल्लाह जल्ल शानु की रजा जोई के लिए हो रहा है, इसलिए वो मा सिवा अल्लाह नहीं, लिहाजा लश्कर की तरतीब का ख्याल कसदन लाना भी नाजायज नहीं। अजीब मसला है नमाज में मसला सोचना, लिहाजा आलिम शख्स को नमाज में मसला सोचना जायज तो है, लेकिन सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि हर काम का एक मौका होता है, लिहाजा हमें तो उसकी कोशिश करनी चाहिए कि दूसरा ख्याल ना आए, उसी ताअत की तरफ तवज्जो रहे, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ जाए, मसलन वक्त नहीं है और नमाज ही में सोचना पड़ गया, तो भी गुना नहीं। तो जी इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह और उनके भाई का वाकया सुनो। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह जो बहुत बड़े सूफी भी थे और बड़े आलिम भी थे, इमाम गजाली रहमतुल्लाह का नाम सबने सुना है, और फकीह भी बड़े थे, उनके एक भाई थे इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह का नाम मोहम्मद था, भाई थे उनका नाम था मोहम्मद और इनका नाम था और उनकी 10 पुश्तों तक सबका नाम मोहम्मद ही मोहम्मद था, मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद मोहम्मद गजाली सबका नाम। अल्लाह अजीब, ये तो कभी देखा ही नहीं। मोहम्मद का बेटा भी मोहम्मद, बाप भी मोहम्मद और वो भी मोहम्मद, सुभान अल्लाह जी। हाँ, बिन मोहम्मद गजाली, उनके भाई का नाम अहमद गजाली था, एक ये मोहम्मद गजाली एक अहमद गजाली। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह तो जामे शरीयत और तरीकत थे, हाँ वो जामे शरीयत और तरीकत थे, यानी पूरे आलिम भी थे, फकी भी थे, सूफी भी थे। उनके भाई सिर्फ सूफी थे, उलूम ज़ाहिरा की तरफ तवज्जो कम थी। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ाया करते थे, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ाया करते थे, लेकिन उनके भाई अहमद गजाली उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे। उनके भाई जो थे अहमद गजाली, वो उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे। एक दिन उनके वालिदा ने उनके भाई से कहा, तुम उनके पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते, तुम उनके पीछे भाई के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते। जवाब में कहा कि बस मैं अपनी नमाज अलग पढ़ लेता हूं। माँ ने इसरार किया कि नहीं, तुम उनके पीछे नमाज पढ़ा करो। चुनांचे इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ने खड़े हुए, ये उनके पीछे नियत बांध कर खड़े हो गए और फिर दरमियाने नमाज में नियत तोड़कर भाग गए। उनके वालिदा ने पूछा कि तुमने ये क्या हरकत की, उन्होंने जवाब दिया कि मुझसे उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ी जाती, इसलिए कि नमाज में भी हैज़ निफास के मसाइल सोचते रहते हैं, लिहाजा मैं इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ता। हाँ, मैं इनके पीछे नमाज नहीं, हालांकि वो मसाइल सोच रहे। वो माँ भी इमाम गजाली की माँ थी, वो माँ भी इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की माँ थी। उन्होंने फरमाया कि खुदा के बंदे, अगर वो नमाज के अंदर इन मसाइल को सोचता है, तू शरीयत के मसाइल तो शरीयत के मसाइल हल कर रहा होता है, वो भी ताअत और इबादत है, और तू नमाज के अंदर उसकी ऐब जोई में लगा रहता है, उसका ऐब ढूंढता है, तुझे नमाज के अंदर उसकी ऐब जोई के ख्याल आते हैं, लिहाजा तू तो नमाज के अंदर हराम काम का इर्तिकाब कर रहा है। अब बता उसकी नमाज बेहतर है या तेरी नमाज बेहतर है। तब उनको तंबीह हुई कि वाकईतन में गलती पर था। वो माँ भी तो इमाम गजाली की माँ थी ना, माए बड़ी अजीब होती है, उनका जवाब दलाइल वाला नहीं होता है, लेकिन ऐसा समझाने का अंदाज होता है कि वो समझ में आ जाता है। हाँ तो देखो कि वो सोच रहे होते, मसाइल सोच रहे होते हैं, और मैं तू ऐबों को सोचता है। अल्लाह अकबर। बहरहाल हजरत वाला फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स नमाज के अंदर ताअत का ख्याल जानबूझकर लाए तो ये जायज है, और अगर ताअत का ख्याल नहीं है तो कसदन लाना तो जायज नहीं, खुद ब खुद आ जाए तो कोई मुजायका नहीं। लिहाजा करने का काम यह है कि अपनी तरफ से उसकी कोशिश करो कि जब अल्लाह अकबर कहकर नमाज शुरू करो तो अपना ध्यान उन अल्फाज की तरफ लगाओ जो तुम जबान से अदा कर रहे हो, और सोच सोच कर पढ़ो। फिर अगर दरमियान में ध्यान और इधर उधर चला जाए तो फिर वापस आ जाओ, फिर भटक जाए तो फिर वापस आ जाओ। इस तरह बार बार करते रहो, इंशा अल्लाह मश्क हो जाएगी, फिर गैर इख्तियारी ख्यालात कम आएंगे। मश्क करने से जो आते थे ना ख्यालात, वो कम हो जाएंगे। जैसे मुराकबे में भी बहुत सारे ख्यालात आएंगे, लेकिन जब आप मश्क करते जाओगे तो फिर वो कम होते जाएंगे ख्यालात, उससे घबराना नहीं चाहिए। हाँ तो ख्यालात कम होते जाएंगे, और जो ख्यालात आएंगे वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। अल्लाह ताला हम सबको ख्यालात से और वसाविस से हिफाजत फरमाए और इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जी। तो ये था वसाविस के बारे में। 49 और 50 ये दोनों जो मजलिस थी, ये दोनों के दोनों उसी के बारे में थी। आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उजब के बारे में आ रहा है। अल्लाह, सबसे पहले इंसान के अंदर उजब पैदा होता है और उस उजब की इंतहा तकब्बुर पर होती है। चलो इसको कल ही पढ़ेंगे, आज थोड़ा सा इतना ही करके छोड़ देते हैं क्योंकि इसको मुस्तकिल समझाना होगा। थोड़ी देर मुराकबा कर लें।